ओम शांति। तो अभी के पैनल डिस्कशन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय दिव्या प्रभा बहन को। आप मंच पर आ जाएंगे और आप सभी तालियों से दीदी का स्वागत करेंगे। आप ट्रांसपोर्ट विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं। साथ में मैं आमंत्रित करती हूँ मुकुल भाई, आपको, आप मंच पर आ जाएं और सभी तालियों से स्वागत करेंगे। आप स्कोडा वॉक्सवैगन ट्रेनिंग एकेडमी के जनरल मैनेजर हैं और मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के मेहमान ब्राता शील आशीष जी, आप भी मंच पर आ जाएं और सभी करतल ध्वनि से आपका स्वागत करेंगे। आप ईस्ट सेंट्रल रेलवे के डेप्यूटी स्टैटिस्टिकल एंड एनालिटिकल ऑफिसर है, तो आपका भी हम स्वागत करते हैं। और मैं आमंत्रित करती हूँ अशोक मोनानी जी को, आप भी मंच पर आ जाइए और सभी करतल ध्वनि से आपका स्वागत करेंगे। आप एकता वर्ल्ड बिल्डर्स के आप चेयरमैन हैं, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। सभी करतल ध्वनि से एक बार मंच पर उपस्थित सभी का स्वागत करेंगे। और अभी हम शुरू करेंगे आज का कार्यक्रम परमात्मा की स्मृति में रहकर। तो थोड़ी देर परमात्मा की याद में बैठकर आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं।
ओम शांति। आप सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति, मुस्कुराकर कहें, उमंग उत्साह से कहें। आपको इमोशन समझ में आता है, ये मुझे समझ में आ रहा है। नमस्ते एंड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग करिए, आपके गुड इवनिंग में बहुत जोश होना चाहिए क्योंकि हमारे स्टेज में इतने महान हस्तियां बैठे हैं। बहुत प्यार से कहिए गुड इवनिंग। और हमारे आदरणीय गेस्ट का स्टेज में तालियों से स्वागत करिए। बहुत अच्छा। एक स्पेशल प्रकार की ताली करेंगे, ठीक है? उसका एक इम्पैक्ट होगा, वो आप देखना। शायद आपने महसूस नहीं किया है, बट हमारा ऐसा भाग्य नहीं रहा है। सब अपनी उंगलियां ऐसे करिए, एवरीवन, दूसरा हाथ भी ऐसे करें। आपको ताली बजाना है, लेकिन जब मैं वन कहूंगा तो सिर्फ वन से बजाना, ठीक है? जब टू कहूंगा तो टू से, थ्री का थ्री से, फोर का फोर से, फाइव का फाइव से। मैं कहूंगा नहीं, बस इशारा करूंगा। विल दैट बी फाइन? सो व्हेन आई डू माय फर्स्ट फिंगर, यू हैव टू क्लैप विद द फर्स्ट फिंगर। ऐसे में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दिस इज कॉल्ड एज रेन क्लैप, ठीक है? पहले धीरे बारिश आएगा, फिर जोर से आएगा। रेडी, स्टार्ट। उनका अभी भी जोर से गिर रहा बारिश। चलिए, आपको लगा बारिश आ रही है जोर से, फिर धीरे धीरे कम हुआ? यस और नो? फैंटास्टिक। चलिए, आज का हमारा ये जो सेशन है, ये बहुत ही वंडरफुल है। इट इज अ क्वेश्चन आंसर सेशन। आपके मन में भी अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप भी एक छोटे से पीस ऑफ पेपर में लिख करके हमारे पैनलिस्ट के लिए क्वेश्चन रख सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपना प्रोग्राम शुरू करें, हमारे जो पैनलिस्ट हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। सबसे पहले तो आदरणीय दिव्या दीदी हैं। दिव्या दीदी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। वो 1969 में ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जुड़े, वो सबसोन इंचार्ज ऑफ द राजयोगा सेंटर ऑफ नॉर्थ मुंबई हैं। एंड शी इज शोल्डरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर 30 ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स फ्रॉम जोगेश्वरी टू सफाला एंड वापी। जोर से ताली बजाएं दीदी के लिए। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में मुकुल भाई खास पुणे से आप सबके साथ मिलने के लिए और ये ट्रांसपोर्ट ट्रैवल विंग में बहुत अपना योगदान देते हैं। ब्रदर इज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, आप देखेंगे उनके आंसर्स में। ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर, अ साइकोलॉजिस्ट एंड एन इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर, 28 ईयर्स ऑफ कॉरपोरेट वर्किंग एक्सपीरियंस। ही इज प्रेजेंटली द हेड ऑफ द ट्रेनिंग अकेडमी इन अ लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप इन पुणे, और वो पिछले लगभग 30 वर्षों से राज्यों का अभ्यास करते हैं। और उनकी जो विशेषता है, बहुत जो डिफिकल्ट चीजें होती है, जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती है, उसको सरल करना है, उसको सिंपल करना है, और वो डेवलप करते हैं लर्निंग गेम्स के द्वारा। वे उन्होंने अभी विशेष वो PhD कर रहे हैं। सम ऑफ द मेडिटेशन रिसर्च इज जॉइंटली डन विथ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक DRDO, DPAS, DIPR एंड INMAS इन दिल्ली। आई वॉन्ट यू टू वेलकम हिम विथ अ वेरी गुड राउंड ऑफ अप्लॉज। हमारे साथ और भी दो विशेष गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं BK अशोक मोहनानी जी, ही इज अ चेयरमैन ऑफ एकता वर्ल्ड, आपने कल उनको सुना होगा। साथ में हमारे साथ हैं ब्रदर शील आशीष जी, ही इज एन IRAS ऑफिशियल डिप्टी स्टैटिस्टिकल एंड एनालिटिकल ऑफिसर ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जो मेरे बाजू में बैठे हैं। मैं बहनों से निवेदन करता हूं कि वे स्टेज पर आएं और आदरणीय हमारे जो गेस्ट हैं, पैनलिस्ट हैं, उनका फूलों के द्वारा, बैजेस के द्वारा स्वागत करें। ब्रह्मा कुमारी सिस्टर्स, आदरणीय दिव्या दीदी को वेलकम कर रहे हैं बहनों। मुकुल भाई, शील आशीष भाई, गिरीश भाई को भी दे रहे हैं ताली बजाएं जोर से। थैंक यू। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे। पिछले कल से आप यहाँ पर हैं और एक दिन और एक दो दिन यहाँ रहेंगे, तो उन प्रश्नों को कैसे हम प्रैक्टिकली उसका क्या समाधान हो सकता है, आज हम हमारे पैनलिस्ट से ये प्रश्न पूछेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आदरणीय दिव्या दीदी जी से। दीदी, आज का जो हमारा जो विश हाँ अशोक भाई का स्वागत कर रहे हैं दीदी। दिव्या दीदी से मेरा प्रश्न ये है कि आजकल मेडिटेशन, पोस्ट कोविड मेडिटेशन कहो, योगा कहो, इसका बहुत प्रचार और प्रसार होता है। एंड दिस वर्ड मेडिटेशन आजकल उसको एक फैशन के रूप में, एक फैड के रूप में भी यूज करते, एक ट्रेंड बन चुका है कि सब लोग ऐसा करते हैं। दीदी, मैं जानना चाहता हूं कि जीवन में या आध्यात्मिक जीवन में मेडिटेशन को इतना क्यों महत्वपूर्ण माना गया, इसको क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है, और इससे क्या हमारे प्रैक्टिकल जीवन में फायदा होता है। हम चाहेंगे, आपका इतना रिच एक्सपीरियंस है, उस आधार से आप हमें बताएं, गाइड करें।
ओम शांति। पिछले कुछ वर्षों से देश और विदेश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योगा को बहुत ही आगे बढ़ाया है, सबको उसमें इंटरेस्ट क्रिएट किया है, और अनेक प्रकार के योग सब सीख रहे हैं। उसमें आसन, प्राणायाम भी करते हैं और मेडिटेशन। मैंने देखा है कि आसन, प्राणायाम आदि जो हम करते हैं, हमारे शारीरिक हेल्थ के लिए बहुत ही यूजफुल है। शरीर को स्वस्थ और फ्लेक्सिबल रखने के लिए। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी हम ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर ये महसूस कर रहे हैं कि वो आसन वगैरह कर रहे हैं, फिर भी वो आकर के कहते हैं कि हमें मेडिटेशन सीखना है। काफी डॉक्टर्स भी उनको गाइड कर रहे हैं कि आप ब्रह्मा कुमारीज में जाओ और वहां मेडिटेशन सीखो। तो क्या डिफरेंस है? मेडिटेशन ये मन से रिलेटेड कनेक्टेड चीज है, तन को तो स्वस्थ रखते हैं, लेकिन हमारा मन स्वस्थ शक्तिशाली रहे, हमारा मन शांत हो, स्थिर हो, और हर एक चाहता है कि मेरी मन की स्थिति वो बहुत ही पावरफुल, मेरा विल पावर है बढ़े। कई आकर के कहते हैं कि बाकी सब कुछ तो ठीक है, मेरा विल पावर है ना नहीं है, मन से कमजोर हुए हैं, और सब चाहते हैं कि मन मेरा शांत हो। और हर व्यक्ति हर कार्य के लिए अपने मन को एकाग्र करना चाहता है। तो इन बेनिफिट के लिए मेडिटेशन जो मन को स्वस्थ करने वाला है, और इसीलिए सबकी बाकी सब आसन करते हुए भी उनको मेडिटेशन सिखाओ। आजकल तो छोटे बच्चे भी कहने लगे हैं, मदर फादर भी कहते हैं जाओ वहां पर मेडिटेशन सिखाओ। हमारे बच्चे बहुत चंचल हैं, वो स्टेबल एक जगह बैठ भी नहीं पाते हैं। बहन जरा इनको मेडिटेशन सिखाओ ना, बच्चों को भी भेजते हैं, बच्चे भी कहते हैं कि हमें मेडिटेशन सीखना है। अर्थात मन को सब शांत और स्थिर करने में मेडिटेशन का बहुत बड़ा योगदान है, और इसीलिए सबकी रुचि उस ओर है।
दीदी ने बहुत सिंपल तरीके से कहा कि मन को स्थिर करने का एक टेक्निक कहें, टूल कहें, दवाई कहें, वो मेडिटेशन है। और शरीर के लिए तो फिर हम आसन, प्राणायाम, बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अस्थिरता की बात की, तो मैं मुकुल भाई से प्रश्न पूछूंगा कि आज का जो प्रोफेशनल वर्ल्ड है, हम सब यहाँ पे नौकरी करते हैं या फिर किसी ना किसी बिजनेस एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, तो भविष्य को लेकर, करियर को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के मन में बहुत सारे डाउट आता है, या इंस्टेबिलिटी होता है, या कंफ्यूजन है, या डर है। सो हाउ डू आई गेट रिलीफ फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स? क्या करना चाहिए एज अ प्रोफेशनल टू बिकम मोर स्टेबल एंड सीरीन एट द मेंटल लेवल?
देखिए, प्रोफेशनल क्षेत्र में जो भी हम लोग रहते हैं, अदर देन दोज हु आर वर्किंग विथ हैंड्स, प्रोडक्शन के अलावा जिनों के मस्तिष्क के कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल कारण से रिक्रूट होते हैं, उनको तो काम ही है प्रॉब्लम सॉल्व करना। समस्या को झेलने के लिए ही उनको अच्छे सैलरीज मिलते हैं, राइट? इसमें क्या है, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि हमारे रेजिलियंस, इनर रेजिलियंस जितना अधिक शक्तिशाली होंगे, उतना हम अच्छी तरह से उस सिचुएशन को झेल पाएंगे। एक है हमारे व्यक्तित्व, व्यक्तिगत कॉम्पिटेंस उस विषय पर जिस क्षेत्र पर हम कार्यरत हैं, वो तो है ही, इसीलिए तो आप उस जिम्मेवारी ले रहे हैं। परंतु उनके साथ साथ स्पिरिचुअल कॉम्पिटेंस वाली जो बात है, जो हमें रेजिलियंस दिलाती है, जैसे हमारे अंदर धैर्यता कितना है, हमारे अंदर लोगों को हैंडल करने का सुंदर तरीका किस तरीके से नेचुरल वे में वो है या नहीं, ये जो रेजिलियंस डेवलप करना, ये बहुत बहुत जरूरी है। इससे हम किसी भी सिचुएशन से स्टेबल रह सकते हैं। दूसरी बात कि जैसे मेडिटेशन में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में सिखाया जाता है कि आप डिटैच हो पाए, at some point of time you need to get dissociated. So association and dissociation, ये जो कला है ये बहुत बहुत important है profession में, because होता क्या है कि आप सभी इस चीज के अनुभवी हैं ही कि कई बार important meetings होते हैं back to back, और एक बहुत ही not so good meeting has ended and another equally important meeting उसके पश्चात है. तो अगर हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं व्हाट हैज हैपेंड इन द प्रीवियस मीटिंग देन इट वोंट वर्क. तो इसके लिए रेजिलियंस बढ़ाना थ्रू इनर प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ये एक चीज है और ये बहुत कठिन नहीं है, ये बढ़ सकता है. और साथ साथ जो है ये एसोसिएशन डिसोसिएशन जो मेडिटेशन में हम लोग खास साक्षी भाव का अभ्यास कराते हैं इससे बढ़ सकता है. दिस इज वेरी मच पॉसिबल, डूएबल.
ओके, प्रैक्टिकली प्रोफेशनल वर्ल्ड में रहते हुए आई कैन बी डिटैच्ड फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द प्रीवियस मीटिंग एंड आई कैन बी फ्रेश फॉर द नेक्स्ट मीटिंग.
ऑन डिमांड आई कैन डिटैच एंड अटैच, एंड इट इज ऑल ऑफ अस हु आर सिटिंग हियर कैन डू इट, इट्स ऑन डिमांड. आप एक चीज बताइए ना, आपको पैसा लगता है तो आप पैसा निकाल सकते हैं जी. हाँ या ना, एक राशि निकाल सकते हैं. अगर वो स्थूल मशीन आपको सहयोग दे पा रहा है तो यहां पे भी मशीन लगे हुए हैं जो बहुत ही सूक्ष्म मशीन है, सो इट इज वेरी मच पॉसिबल.
मुकुल भाई, आपसे आपकी बातें सुनकर मेरे मन में जो प्रश्न आ रहा है वो मैं दीदी से पूछना चाहूंगा. भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं. ऐसा नहीं समझना कि आप लोग मुक्त हैं, मैं इनसे ही प्रश्न पूछूंगा. कुछ लोग इतने रिलैक्स्ड बैठे हैं, बोलेंगे हमसे तो प्रश्न ही नहीं पूछा जा रहा है. प्रश्न नंबर एक, क्या आपका हाथ आपका सदा सुनता है? Does your hand always listen to you? Yes or no? Okay. Does your leg always listen to you? Yeah. And the third and the final question. Does your mind always listen to you? अगर मेरा हाथ और पैर मेरा ना माने under normal condition, ऐसा नहीं हो सकता. एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब मुझे राइट साइड ऑफ द हेमिस्फीयर में स्ट्रोक हो, पैरालिसिस हो, तो माय लेफ्ट हैंड विल नॉट लिसन टू मी. अगर मेरा मन नहीं सुन रहा है, इसका मतलब मन में क्या है? जोर से बोलिए, पैरालिसिस. दीदी, प्रश्न आपसे ये है, ये मेडिटेशन के अभ्यास से हम अपने मन पर कैसे जीत पाए, क्या उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए? अब ये मन को ही एकाग्र करना, मन को ही मनवाना, यही तो सबसे डिफिकल्ट बात है. कैसे मेडिटेशन सहज हो सकता है, कब करना चाहिए, कितना समय करना चाहिए, ताकि जो शायद मेरे मन में पैरालिसिस है उस बीमारी से हम अपने आप को फ्री कर सकें. दीदी,
मेडिटेशन के लिए कई बार समझा जाता है कि बहुत डिफिकल्ट है. हाथ को ऊपर करना इजी लग रहा है, पैर को जिस ओर मुड़ना हो इजी लगता है, लेकिन मन को हम डायरेक्शन दें, हमारे मन को कहें कि समय पर आप शांत हो जाओ. अभी मुकुल भाई ने कहा कि कोई घटना परिस्थिति है, मन को कहते हैं कि हे मन, अभी तू धैर्यता रख. उस समय पर मन क्या मेरा मानता है? एक तो ये हुआ है कि मन को कभी हमने समझने की कोशिश नहीं की है, मन की चाल को हमने अपने आप में कभी देखा ही नहीं है, मन का इंटरेस्ट रुचि क्या है वो भी हमने कभी जाना नहीं है ना. हमारे हाथ पैर को हमने समझा है और उनको चलाते हैं, लेकिन मन को समझ कर, मन को हम जो सूचना डायरेक्शन दे उस हिसाब से मन कार्य करे, वो तब होगा. जबकि अभी यहां गति की भी बात है कि मन बहुत तेजी से जब सोचता है, जैसे तेजी से व्हीकल चलाओ तो एक्सीडेंट होते हैं, गति उसकी संतुलन में है तो प्रॉब्लम नहीं है, कंट्रोल में. इसी तरह से मन के विचार इतने तेजी से चलते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। अभी मेडिटेशन द्वारा हमें अपने मन को अपने कंट्रोल में करना है और उसी के लिए मन के विचारों की गति को हमें कम करना होगा और मन को जो दिशा दे उसकी तरफ से मन चले उसकी प्रैक्टिस अभ्यास। जैसे हाथ को भी समझो मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ तो मैं कुछ समय हाथ को सेकंड भी ऊपर रख सकती हूँ फिर पेन होता है। जिनको अभ्यास है वो अभी बीच में नहीं है यार, मैंने सोचा था हमारे पास एक भाई ने दांतों से पूरे व्हीकल को खींचा, आप और हम करेंगे नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस अभ्यास बहुत जरूरी है। तो ये मन को भी हम जो थॉट दे जो विचार करें उस हिसाब से चलाने का अभ्यास करना पड़ेगा और ये अभ्यास सुबह में प्रभात के समय पर शाम के समय पर भाई ने कहा कि कब करना चाहिए। हमारे जीवन के हर कार्य के समय पर हम ये इसका अभ्यास कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कुछ घंटे ही बैठ जाएं उसके लिए, शरीर को स्टेबल कर दें। हम कोई भी कार्य जब करते हैं छोटा हो वो कार्य बड़ा हो, लेकिन उस समय पर मैंने जो सूचना दी उस हिसाब से मन कार्य कर रहा है, उस कार्य में मन एकाग्र होकर के कार्य हो रहा है, यही तो है मेडिटेशन। और यहाँ बहुत अच्छा समझाया जाता है कि मेडिटेशन इजी तब होगा हम जितना बॉडी कॉन्शियस रहते हैं। बॉडी का रिलेशन बहुत स्थूल चीजों से भी है व्यक्तियों से भी है तो उतना मन ज्यादा भटकता है। और इस तन को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा उसका संबंध रिलेशन एक परमात्मा गॉडफादर से है। तो जब देह को भूलते हैं तब परमात्मा को याद करना इजी हो जाता है। और इसीलिए गीता में अर्जुन ने कहा कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूलो तब ही तुम मेरी शरण में आ सकते हो। मन को ईश्वर में जोड़ना ही मेडिटेशन है और उसके लिए इस देह को भूलना जरूरी है और ये सब प्रैक्टिस से इजी सहज हो सकता है। ओम शांति।
थैंक यू दीदी। मैंने जितना दीदी के रिस्पांस को समझने का प्रयास किया इट्स वेरी इजी। मुझे एनिमल्स बहुत अच्छे लगते हैं, शायद आपके घर में भी काफी घरों में पेट्स होते होंगे, तो मैंने मार्केट से एक पपी डॉग के बच्चे को लाया। प्रश्न, क्या 2-3 साल के बाद जो मालिक इंस्ट्रक्शन दे वो मानता है या नहीं मानता? बस उसकी जगह पर इसको रख दो। कोई लोग हंस भी रहे हैं। I mean, can I talk to my mind very peacefully? Can I train my mind? Can I love it? Can I make my mind my best friend? और ये completely जब दीदी ने कहा देह के धर्मों को भूलना पड़ेगा का अर्थ है कि हमारे जो wrong identities हैं, मैं officer हूँ, मैं transporter हूँ, मैं पति हूँ, ये फिर आपको जोड़ने नहीं देगा। So during meditation वो detachment जो मुकुल भाई कह रहे थे। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत beautiful आपने सहज तरीके से हमको बताया। प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं मुकुल भाई से प्रश्न पूछना चाहूंगा। दीदी ने कहा कि आप कभी भी मेडिटेशन कर सकते हैं, नॉट नेसेसरली आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। हम इतने बिजी रहते हैं भाई साहब, मुंबई, आपने से मुंबई के कौन कौन है जरा हाथ ऊपर उठाए? ओ माई गॉड, फैंटास्टिक। मुंबई में पता है लोग क्या बोलते हैं? हम उनको कहते हैं ना मेडिटेशन करने आप आइए थोड़ा टाइम निकालिए, मुंबई के लोग कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं है। तो फिर मैं उनको मजाक में कहता हूं आप इच्छा जाहिर करिए प्रबंध मैं कर दूंगा। ठीक है मुकुल भाई, हाउ डू आई टेक टाइम टू मेडिटेट?
नहीं मरने की इच्छा जाहिर करो तो कर देंगे या मेडिटेशन की इच्छा जाहिर करो कौन सा?
देखिए कहां से निकाले टाइम।
हम इसको दो भाग में आंसर देना चाहेंगे, रेस्पॉन्ड करना चाहेंगे। हम व्यक्तिगत रूप से जो करते हैं वो शेयर करेंगे। और हम तो ये कहेंगे गिरीश भाई कि मुंबई इज द मोस्ट ब्लेस्ड प्लेस टू प्रैक्टिस मेडिटेशन। आप जो गाड़ी में जाते हैं उससे भी ज्यादा ब्लेस्ड हैं जो मुंबई लोकल से रेगुलर जाते हैं। दैट्स द बेस्ट प्लेस टू प्रैक्टिस मेडिटेशन, दैट्स द बेस्ट प्लेस। कौन कौन मुंबई लोकल से रेगुलर ट्रैवल करते हैं, खुद को शाबाशी दीजिए कि आपके जैसा मेडिटेशन प्रैक्टिस करने का जो एनवायरमेंट है, आपको फ्री में जिम मिल रही है प्रैक्टिस। वो जिम नहीं, एक्सरसाइज वाली जिम नहीं, धक्का बुक्की वाली जिम नहीं, केओस के बीच में आप स्टेबिलिटी का प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमारे सारे दिन पे वेकिंग अप से लेकर रात को सोने तक बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जहां पे बौद्धिक रूप से हम फ्री हैं। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल जहां हम प्रैक्टिस करते हैं। हम पानी पीते हैं, सो पानी पीने के लिए वी सिप इट, और वी बहुत प्यास लगाए तो ऐसे करके गल्प कर लेते हैं, बट स्टिल इट टेक्स अबाउट 30-40 seconds। इस 40 सेकेंड्स को आप अवेयरनेस के साथ पानी पीजिए और कुछ गुड एफर्मेशंस उसके साथ जोड़ दीजिए। 1 मिनट सारा दिन में अगर 8-10 times अगर आप ये 1 मिनट प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिस इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, इट्स एन एफर्मेशन विच यू आर प्रैक्टिसिंग, बट बी अवेयर। दूसरी बात, हम लोग जो कम्यूट करते हैं, ट्रैवल करते हैं, चाहे बस में हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, पर्सनल व्हीकल में हो, आपका जो कम्यूट है मिनिमम 30 मिनट्स तो होता ही होगा, या मोर देन दैट 2 आवर्स 3 आवर्स वाले भी हैं। उस कम्यूट को डिवाइड कर लीजिए, बॉक्स अप कर लीजिए कि ये जो 15 मिनट स्पैन है, ये मेरा 1 आवर कम्यूट के बीच में 15 मिनट का टाइम मैं अफर्मेशन का प्रैक्टिस करूंगा या मैं मेडिटेशन की प्रैक्टिस करूंगा। 5 मिनट मैं कुछ अच्छी बातें सुनूंगा, 1-2 calls भी आप भले कर लीजिए, वो तो आप करते ही हैं, गीत सुनना आदि आदि करते ही हैं, परंतु उसके साथ एक टाइम डिसाइड कर लीजिए कि दिस पार्ट, दिस स्ट्रेच ऑफ माई ट्रेवल आई विल प्रैक्टिस अफर्मेशन। और इसके साथ आपका अगर एक फिक्स रूट होता है ट्रेवल में, एक रेगुलर रूट में, रेगुलर स्ट्रेच में अगर आप कंडीशन हो जाएंगे ना, तो बहुत आसानी से जैसे ही उस स्ट्रेच में आपकी गाड़ी घुसेगी, आपके अंदर मेडिटेशन करने का प्रवणता जागृत होगा। इवन कोई साथ में है, बात कर रहा है, आपको लगेगा अरे आई एम मिसिंग टुडे समथिंग। सो दिस इज अ वे विच कुड बी प्रैक्टिस। द अदर इज वॉकिंग। हम लोग सभी वॉक करते हैं, हाँ या ना? मैं मॉर्निंग वॉक की बात नहीं कर रहा हूं केवल, या इवनिंग वॉक का बात नहीं कर रहा हूं। आप ऑफिस में, घर में, एक स्थान से दूसरा स्थान मूव कर रहे हैं, आप उसके साथ कंडीशनिंग प्रैक्टिस कीजिए, हर स्टेप के साथ आप कुछ अफर्मेशन प्रैक्टिस कीजिए। खाना खाते समय शांत बैठकर कुछ अच्छे एक्सपीरियंस करते हुए भोजन कीजिए। तो इस प्रकार से मेडिटेशन के बहुत सारे समय है, इवन व्हेन वी आर टेकिंग बाथ, और स्लीप में जाने के थोड़ा पहले 5-7 मिनट्स। ये सारा दिन में देर आर 12 डिफरेंट मोमेंट्स जहां पे आप मेडिटेशन, अफर्मेशन, अवेयरनेस के प्रैक्टिसेस कर सकते हैं।
तो समाधान मिला, आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है ना दीदी? इसी को मैं थोड़ा सा, जो घर में रहते हैं, बहनें हैं, वो भले ज्यादा ट्रैवलिंग, आप में से कौन कौन है जो बहुत ट्रैवलिंग नहीं करते हैं, बहनें? अच्छा, काफी लोग हैं दीदी। ये बहनें घर में फिर कैसे टाइम निकाले दीदी मेडिटेशन का? और आजकल तो जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो कहते हैं, हस्बैंड को कहते हैं, आपसे ज्यादा बिजी मैं रहती हूं, ठीक है ना? तो वो कैसे टाइम निकाले हैं? वो अपने शेड्यूल में खाना बनाना, बच्चों को संभालना, बाकी कारोबार करते हुए कैसे नॉर्मल मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं?
हमें हर घर के कार्य को करते हुए भाई ने कहा कि मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं, तो हम अपने मन को उस कार्य के साथ जोड़ करके हम एक विधि या मेथड को अपना लें। मुझे याद आता है ब्रह्मा बाबा की बात, उनकी क्लोकिक देखी थी उनके बारे में, कि कैसे हर कार्य करते हम पॉजिटिव सोचें, विचार करें, तो मेडिटेशन उसमें अपने आप में होता है। समझो भोजन बना रहे हैं, अब भोजन बना रहे हैं उस समय पर हमारे मन में क्या सोच चल रहा है, क्या विचार हम कर रहे हैं, क्योंकि इस विद्यालय में बहुत अच्छी बात बताई जाती है, अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है। क्या सोचते हुए हम भोजन बना रहे हैं, चाहे सब्जी काट रहे हो, चाहे कुछ पीस रहे हो, चाहे आटा गूंद रहे हो, तपेले पे चम्मच हिला रहे हो, उस समय पर हमारी मन की स्थिति, हमारा सोच कैसा है, उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। और इसीलिए जब भोजन बनाते हैं तो मैं भगवान के लिए प्रसाद तैयार कर रही हूँ, कहीं अपने घर में भक्ति में भोग लगाते हैं, खाना बना के भगवान को ऑफर करते हैं फिर खाते हैं, और पद्धति है कि परिवार के सदस्यों के लिए बना रहे हैं, ये भगवान की संतान है, उनकी सुंदर रचना है, उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ, पिरोस रहे हैं, तभी भी वो शुभ भावनाओं के साथ, भगवान की याद के साथ हम भोजन पिरोसे कि ये भोजन जो भी खाएगा उनका मन, उनका हृदय वो प्योर शुद्ध शांत हो जाएगा, ये भोजन जो खाएगा उनके हृदय में सर्व आत्माओं के प्रति एक रूहानी अलौकिक निस्वार्थ प्यार उत्पन्न होगा। इस भावनाओं के साथ पिरोस रहे हैं तो भगवान की याद भी है, पिरोसने का कार्य भी होता है। समझो हम बर्तन भी साफ कर रहे हैं, अपनी थाली चम्मच ग्लास को, इस बर्तन को साफ करती हूँ मैंने परमात्मा की याद में रह के, मेरे मन को मैंने कितना साफ किया है ये सोचूं, वो सफाई भी होगी और परमात्मा की क्या होगी, याद भी आएगी। ऐसे हमें अपने आप में जो हमारे रूटीन कार्य हैं उनके साथ परमात्मा की याद को जोड़ देंगे तो इजी याद कर सकेंगे। ओम शांति।
बहुत अच्छा दीदी, और मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि हमारा जो रेगुलर क्लास होता है ब्रह्मा कुमारीज में, वहां पर ये सब बातें हमको बहुत अच्छी तरीके से इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि हम रेगुलर बेस में हम वो अवेयरनेस के साथ हर कार्य करें। और शायद जो दीदी और मुकुल भाई कहने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी कार्य हम बहुत अवेयरनेस के साथ करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा रिजल्ट आता है। मैं आपको एक छोटा सा रिसर्च बताता हूं। एक होटल में जो होटल का जो स्टाफ था उसमें जो विशेष महिलाएं थी, ये फॉरेन कंट्री का एक रिसर्च है, दे वर ओबीस, थोड़ा ओवरवेट थे वो कंपैरेटिवली, और उनको पास टाइम नहीं था टू गो टू अ जिम या फिर किसी प्रकार का वो वेट रिडक्शन का प्रोग्राम कर सके। तो जब उनसे बात किया गया और उनको ये बताया गया कि आप सारा दिन में जो आप कार्य कर रहे हो, 8-10 घंटे होटल में काम कर रहे हो, That is good enough. That is the number of steps. It is more than 10,000 to 15,000 steps. आप चल रहे हो वो काफी है आपके वेट रिडक्शन के लिए। और ऐसा पता लगा, मतलब रिसर्च का फाइंडिंग ये था, when they came to know that what I am doing the entire day is good enough for me to reduce weight, psychologically वो आया, they started reducing weight with the same amount of walking. तो ये मन कितना कमाल कर सकता है, वो अलग से उन्होंने कुछ नहीं किया। So, एक बहुत सुंदर गिफ्ट, पावरफुल गिफ्ट है हमारे पास, वो है हमारा मन, और शायद इसी को हमको थोड़ा सा सेट इट राइट करना है। थैंक यू दीदी, आपका वो बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, प्रैक्टिकल छोटी छोटी टिप्स आपने बताए। हमारे बीच शील आशीष सर हैं, इंडियन रेलवे से हैं, IRS ऑफिशियल हैं। मैं सर से जानना चाहूंगा, सर जहां तक ऑफिस का परिवेश है, विशेष तौर पर इंडियन रेलवेज कहें या एनी अदर ऑफिस, वहां किसी भी अच्छे कार्य के लिए एम्प्लॉयज के अपने जिम्मेवारी के प्रति, अपने रोल्स के प्रति या फिर सेफ्टी के प्रति, हम कैसे उनको मोटिवेट कर सकें? हम बताते तो रहते हैं बट समटाइम्स वी फील दैट जो लोग होते हैं वो थोड़े कंप्लेसेंट हो जाते हैं कई बातों को लेकर के, थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं, तो हम उसको कैसे मोटिवेट करें एज अ लीडर?
थैंक यू सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी ऑफिस हो या फील्ड लेवल वर्क हो जिससे दुर्घटना होती है, सेफ्टी वाली बात जो है, जो हम इस विषय गोष्ठी का विषय है, उसमें मोटिवेट हम अक्सर हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद फिर एक्सीडेंट्स, उसके बाद फिर दो तीन चार छह महीने साल भर के बाद फिर सम न्यू एक्सीडेंट, ऐसा होता रहता है, अनफॉर्चुनेट है। और इसको कम करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हम लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट वी रिक्वायर्ड इज दैट, कि जो आप बता रहे हैं मन और हाथ की आपने उपमा दी, तो बेसिकली एज अ रेलवे सर्वेंट वी आर द हैंड, हम लोग हाथ हैं, हमको करना है काम। मन जो है वो पब्लिक है, जनता है, जो लोग जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो सांसद हमारे होते हैं। जैसे मैं, आपने मोटिवेट की बात की, मोटिवेट क्या, वो तो जब ऑफिस स्टार्ट होता है ये काम करना है, कहाँ गई, जल्दी करो, ये करो, वो मोटिवेट तो डांट डपट से ही मोटिवेट चालू हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन जब खास करके मैंने नोटिस किया है कि जब कुछ पार्लियामेंट से कुछ आता है, जो पार्लियामेंट्री क्वेश्चन है या कुछ है, अभी खासकर अभी अभी फिलहाल में अभी रिसेंट एक्सपीरियंस था कि अभी पार्लियामेंट चल रही थी, तो ऐसी बेचैनी, ऐसी जिसको लगता है बौखलाहट जो है कि करना है ये काम, वी हैव टू डू इट। तो अगर जैसे ऊपर से या हमारे संसद से या कहीं से भी जनप्रतिनिधियों से ये अवेयरनेस जो आप लोगों के बीच में, उनके पर भी प्रेशर बिल्ट अप हो और फिर वो नीचे आएगा हम लोगों के पास, हम लोगों को तो करना है, वी आर पब्लिक सर्वेंट्स, तो मोटिवेट तो हम लोग खुद होते रहते हैं, वी डू इट, ये हमारा काम भी है। लेकिन प्रायोरिटीज जो होती हैं, जो आपकी वो है कि आपको किस चीज पे प्रायोरिटी है, आपको पब्लिक एमिनिटीज देना है, वहां पे लोगों के लिए नए नए चीज करने हैं, या सेफ्टी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, बिकॉज सेफ्टी अवेयरनेस की बहुत कमी है। और जैसे मुंबई की बम्बई लोकल की ही बात की आपने, तो मुंबई लोकल कितनी, वहां मुंबई लोकल के लिए एक रेलवे ने एक नया टर्म निकाला है, ट्रेन आर नॉट ओवरलोडेड, दे हैव द क्रश लोड, मतलब इतनी ज्यादा भीड़ रहती है कि वो किसी कहीं ऑल वर्ल्ड में नहीं है। और जर्नी देखा गया कि पैसेंजर ट्रेन प्रॉफिटेबल नहीं होती है, लेकिन चूंकि इतनी लोड है, इतना होता है कि वो प्रॉफिटेबल में है मुंबई सबर्बन। तो लोगों के अंदर वो जागरूकता आएगी, वो हमारे पास आ ही जाएगा, ऑटोमेटिकली इट विल कम, इट विल नॉट अंटिल एंड, बिकॉज जब भी बजट होता है पीपल फर्स्ट वो होता है कि फेयर कम किया कि नहीं किया, नंबर ऑफ ट्रेन बढ़े कि नहीं बढ़े। यू माइट हैव नोटिस्ड सर, अगर यही जाए कि सेफ्टी पे क्या हुआ, सेफ्टी के ऊपर हमारे सेफ्टी को क्या इंप्रूव करने के लिए सरकार ने क्या किया, इफ पब्लिक मीडिया एवरीबडी फोकसेस ऑन सेफ्टी, नेचुरली जो हम लोग जो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हैं, पब्लिक विल को एग्जीक्यूट करने के लिए हैं, वी विल बी मोटिवेटेड बाय द इंस्पिरेशन प्रोवाइडेड बाय द सीनियर्स जो पब्लिक हैं। और वैसे हमारे यहां भी मेडिटेशन योगा सेशंस होते रहते हैं, मोटिवेट हम लोग खुद भी करते रहते हैं, बट जो विषय है कि सेफ्टी और उसके बारे में, तो दैट डिपेंड्स कि हम कितनी इसको तवज्जो दे रहे हैं, हमको कितना हमारे ऊपर वो है, एम्फेसिस है उसके लिए। थैंक यू।
तो सर का कहने का भाव है कि जो सीनियर टीम है वो कितना ज्यादा अवेयरनेस और उसको एक्सपोजर कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं, और उससे धीरे धीरे, वैसे बहुत सारे चैलेंजेस जरूर हैं। मैं यहां पर मुकुल भाई से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, मैंने तो एज अ लीडर हाउ डू यू मोटिवेट, सो सपोज आई एम दी एम्प्लॉई, ठीक है, और कार्य क्षेत्र में बहुत सारी बातें होती है, कलीग्स हैं, पॉलिटिक्स है, पार्शियलिटी होती है, मेहनत मैं करता हूं, प्रमोशन कोई और लेकर चले जाता है, करप्शन है, ये सब हालातों में कार्य करते हुए मैं कैसे पॉजिटिव रहूं, हाउ डू आई कीप माय माइंड स्टेबल स्टेडी एंड मोटिवेटेड?
टिपिकली गिरीश भाई ऐसा है कि पहले तो ये डिसाइड करना है, आप फुटबॉल मैच देखे हैं?
हाँ जी।
अच्छा, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी,
आप लोगों ने देखा है? हाँ, जरा हाँ बोलिए। बहुत अच्छा।
कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा, तो उसमें तीन तबके होते हैं अगर हम देखेंगे। एक सामने के खिलाड़ी होते हैं जिसको सेंटर फॉरवर्ड, स्ट्राइकर, विंगर आदि कहते हैं। एक बीच वाला तबका होता है, जैसे आप रोज में बैठे हैं उस तरीके के, इसको मिडफील्डर कहते हैं। और तीसरा तरीका है डिफेंडर
डिफेंस।
वो उनका काम है सिर्फ सामने वाला आए कैसे भी करके उनको आगे बढ़ने नहीं देना, क्योंकि गोल होने की चांसेस हैं और गोल कीपर तो है ही। तो हमें डिसाइड करना है कि हम हमारी जिंदगी, ये जो मोटिवेशन के बाद हम क्यों पॉजिटिव रहे, क्यों मोटिवेशन रहे, वो थोड़ा बाद में, पहले तो ये तय करें कि हम सेंटर फॉरवर्ड के तरीके से जिंदगी खेलना चाहते हैं या डिफेंडर के तरीके से जिंदगी खेलना चाहते हैं, पहले ये तय करें। अब सेंटर फॉरवर्ड और डिफेंडर में अंतर क्या है? सेंटर फॉरवर्ड का एक ही लक्ष्य होता है, मुझे कुछ नहीं देखना है, मेरा एक ही ध्येय है, मुझे गोल करना है। मिडफील्डर का ये लक्ष्य नहीं है, मिडफील्डर का लक्ष्य है फॉरवर्ड्स को बॉल बढ़ाना, सप्लाई करना, या आगे से दूसरे ओपोनेंट टीम दौड़ते आ रहे हैं तो उनको कैसे करके भी रुकाना, इनका मिला जुला लक्ष्य है। और डिफेंडर का लक्ष्य है द बॉल शुड नॉट बी इन माई कोर्ट, बस अंग्रेजी में भी बोलते हैं नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, प्रॉब्लम आया तो ढकेल दो। तो हम लोग भी ऑफिस में इस तरीके से काम करते हैं कई बार। अब अगर हम सेंटर फॉरवर्ड के रूप से जिंदगी जीना शुरू करते हैं तो हम कोई भी प्रॉब्लम को नहीं देखेंगे, हम यानी व्यक्ति के जो इश्यूज हैं, कोई बॉस लाइफ में परमानेंट नहीं है, और ये भी बीत जाएगा, ये आध्यात्मिक लेसन है, तो बॉस भी बीत जाएंगे, हमारे सबॉर्डिनेट्स में भी चेंजेस आएंगे। मैं फोकस, हमारे एनर्जी सीमित है तो मेरा फोकस कहां पे है, तो ये जो पर्सपेक्टिव डेवलप करना है इसके लिए स्पिरिचुअल नॉलेज हेल्प्स अ लॉट। या रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट स्पिरिचुअलिटी। तो जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं इस चीज में कि व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कैन आई डू इन अ बेटर वे, व्हाट कुड हैव बीन डन बेटर इन दिस सिचुएशन, ये जब हम सोचते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं अपने मिस्टेक्स को, उससे सीख कर फिर से बाउंस बैक करते हैं, तो देन दिस प्रॉब्लम, दिस ऑल डायनामिक्स विल बी देयर। क्योंकि हमारे लोगों के साथ डीलिंग कैसे है, हमारे लोगों के साथ बिहेवियर को ठीक करना जरूरी है। कई बार हम हायर पोजिशन में जाके हम ह्यूमिलिटी को खोल डालते हैं, यहां वैल्यूज देख रहे हैं, ये जो आप यहां हैंग किया हुआ है, निर्माणता इज वन ऑफ द वैल्यूज विच इज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग वैल्यूज विच अ बॉस कैन हैव। तो इन चीजों पर एक्सपेरिमेंट करना बहुत बहुत जरूरी है, एंड सो देन द कंट्रोल विल बी मच बेटर।
गुड, थैंक यू। What I can understand, what Mukul Bhai was trying to say is that whatever is happening around you can be determined by somebody else. सामने वाला football team क्या कर रहा है, but whatever is happening within me, मेरे अंदर क्या हो रहा है, ये मेरे नियंत्रण पे होना चाहिए और ये मेरा संपूर्ण स्वतंत्र निर्णय है कि आपको उसको फिर कैसे handle करना है। वो चॉइस मेरे पास है कि परेशान होना है, दुखी होना, इरिटेट होना या फिर शांत रहना। मैं दिव्या दीदी से पूछना चाहूंगा, दीदी घर में जो परिवार और संबंध होता है, संबंधों में भी बहुत कलह है, क्लेश है, एक्सपेक्टेशंस हैं, विशेष माताएं बच्चों को लेकर के, अगर कोई घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो कितने समझाने पर भी नहीं समझ रहे हैं, गलती पर कर रहे हैं, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? हम बहुत मायूस हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, लो फील करते हैं, तो उस वक्त, और कभी कभी उसमें हम फिर गुस्सा भी कर देते हैं, तो कैसे ये नेगेटिव जो इमोशंस है उसको कैसे हम नियंत्रण करें?
दिन में बहुत सारे वक्त पर ऐसी सिचुएशन है वो खड़ी होती है हमारे सामने, कई बार हम सामने वाली व्यक्ति को जो कहे उसको वो एक्सेप्ट करने को तैयार न हो तो भी गुस्सा आ जाता है, मानते नहीं है हमारा, चाहे बच्चे हो चाहे उसमें बड़े हो, तो उस समय पर, और उनकी जो कार्य पद्धति है कि जो हमें नापसंद हो ना, कई बार वो करते भी हैं लेकिन वो पद्धति विधि हमें पसंद नहीं आती तो भी गुस्सा है वो आ जाता है। तो उस सिचुएशन में यह बहुत सुंदर बात समझाई जाती है कि हर एक आत्मा है, हर एक व्यक्ति का नेचर अपना अपना है, संस्कार अपने अपने हैं, और जब वो आत्मा उस संस्कार के वशीभूत है, उसके अंडर में है तो उसी तरह से ही वो कार्य करेंगे। हम कहेंगे वो उनको एक्सेप्ट नहीं होगा, उनका जो नेचर है उसी नेचर को लेकर के ही वो चलने वाले हैं। तो हमें उनके संस्कारों को भी रीड करना होगा, समझना होगा, हम अपने तरफ से उस संस्कारों को परिवर्तन करने का प्रयत्न भी करें, लेकिन उसमें धैर्यता रखनी पड़ेगी ना। जल्दी से कोई चेंज जो कोई भी चीज नहीं हो जाती है। तो हम जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से व्यवहार करें तो ये समझते हैं कि वो वशीभूत है, वो अपने नेचर से अंदर में काम कर रहा है, वो स्वतंत्र नहीं है, अभी पतंत्र है। और जब स्वतंत्रता न हो तब वो व्यक्ति सूच के कार्य नहीं करता। तो उन पर तो रहम करना चाहिए, दया करनी चाहिए हमें ना? गुस्सा करके क्या उनमें चेंज आने वाला है? चाहे बच्चे हो बड़े हो, गुस्से से किसको बदला हुआ है? चाहे बदलाव आया भी होगा तो भी टेम्पररी है, परमानेंट तो नहीं। और ही उनके अंदर रिलेशन में और ही मनमुटाव, नाराजगी, एक दूसरे से दूरी है, गुस्से से कार्य करा लेने से वो तो बढ़ती जाती है। हमारे प्रति भावनाएं हैं, वो शुभ भावनाएं भी उनके मन में समाप्त होती जाती है। और जैसे कहा कि वह करते करते एक समय ऐसा आएगा कि जाओ आपका कहना मुझे मानना ही नहीं है, जो हो वो कर लो आप, एक स्टेज वो आ जाती है। गुस्से से हम कार्य करवा नहीं सकेंगे, उन पर रहम करके उनके परिवर्तन में हम सपोर्ट करें ना? और जिस समय पर गुस्सा है तब तो एक्सेप्ट नहीं होगा, बाद में फिर शांति से प्रेम से उनको समझाएं तो उनमें परिवर्तन आने के चांसेस हैं, वो रहते हैं। ओम शांति।
मुकुल भाई, मैं रोड सेफ्टी से संबंधित एक प्रश्न आपको, शायद हम सब ये महसूस करते होंगे कभी ना कभी अपने जीवन में, चाहे हम रोड में सफर कर रहे हों या रेलवेज में हम यात्रा कर रहे हों, कभी कभी ऐसा एक परिस्थिति या एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब जो को पैसेंजर्स होते हैं या फिर जो दूसरे गाड़ी चालक हैं, वाहक हैं, उनके एक्शन से मुझे या मेरे परिवार को या मेरे वस्तुओं को नुकसान होने की संभावना है। और उस समय हमको अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए कभी कभी हम बहुत गुस्सा करते हैं या फिर बहुत डांटते हैं या चिल्लाते हैं या लॉ अपने हाथ में ले लेते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट द राइट अप्रोच या व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव, हाउ डू वी हैंडल इट व्हेन देयर इज अ थ्रेट टू मी और माय फैमिली बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ द अदर पर्सन? सो हाउ डू आई हैंडल दीज सिचुएशंस? आप कहते हैं शांत रहना है, पॉजिटिव रहना है, बट उस वक्त वो नहीं हो पाता है, तो व्हाट डू वी डू?
देखिए, कोई व्यक्ति अगर ऐसे कोई आचरण कर रहा है, केवल हमारे घर वालों के लिए नहीं लेकिन किसी भी अन्य व्यक्ति को जिसका नेगेटिव प्रभाव हो सके, इंजुरी हो सके, हार्म हो सके, किसी भी प्रकार से नुकसान हो सके, तो डेफिनेटली उस पर तो इंटरवेन करने का आवश्यकता है। परंतु इंटरवेन करने का एक सभ्यता, एक शालीनता होती है। हमें गुस्सा करके किसी को सुधारना ये कोई कंपल्शन नहीं है। और हम ये उदाहरण बहुत सारे हमारे भारत के जो संत महात्माएं हुए हैं, भारत के प्रशासन में रहे हुए ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम देखे हैं कि, और हमारे, मैं बहुत लॉन्ग टाइम, लॉन्ग बैक का भी बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है हमारे संबंध संपर्क में भी ऐसे लोग होंगे हु कैन वेरी असर्टिवली, जैसे हम लोग मैनेजमेंट में कहते हैं कि भाई सबमिश, सप्रेसिव रहना इज वन थिंग, एग्रेशन इज अनदर थिंग, बट मिडवे इज असर्शन। तो असर्टिवनेस जो है तो वो हम तो डिस्प्ले कर ही सकते हैं और उनको बताना हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट मी एंड देयरफॉर रिक्वेस्टिंग टू चेंज द बिहेवियर। तो ये तो होना ही चाहिए, करना ही चाहिए। लेकिन होता क्या है, उस व्यक्ति के गलत आचरण से हम विवश हो जाते हैं और हम अपने विवशता को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसकी अभिव्यक्ति गुस्सा के रूप से दिखाते हैं। तो बेसिकली उनका तो प्रॉब्लम है, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारा प्रॉब्लम है क्योंकि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और उसमें कुछ शब्द ऐसे स्लिप ऑफ टंग होकर निकल जाती है जिसमें और भड़काऊ वातावरण बन जाता है। एंड रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं एक शब्द दो शब्द किसी के मुंह से स्लिप ऑफ टंग होने से टू द एक्सटेंड ऑफ इट कैन क्रिएट अ हैवॉक राइट आल्सो टू एन एक्सटेंड राइट। तो इसके लिए हम क्या सोच रहे हैं संतुलित रूप से उस चीज को हैंडल करना, डेफिनेटली वी शुड रेस्पॉन्ड। देखना ये तो क्राइम होगा अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं समथिंग इज गोइंग रॉन्ग एंड द कंसिक्वेंसेस कैन बी फैटल, फिर भी मैं उसका प्रतिसाद नहीं दिया, मेरा क्या लेना देना है, नहीं तो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज पनिशेबल इवन इन इन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू सी अ क्राइम हैपनिंग, इफ यू सी सर्टेन मैल प्रैक्टिसेस हैपनिंग और उसको अगर आप प्रतिसाद नहीं देते हैं, एस्केलेट नहीं करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो आप भी उसके लिए गुनहगार हैं, मे बी अ सॉफ्ट गुनहगार।
So what brother is trying to do say is more than the what part of it, the how part of it is also very very important. हम क्या करते हैं साथ में उस resistance को हम किस प्रकार से हमारा जो behavior कैसा है उस पर हमारा संपूर्ण नियंत्रण हो सकता है।
यहाँ एक चीज add करना चाहेंगे कि कई बार हमें ये quickly हम लोग अगर conscious होके देखेंगे तो पता चलता है कि इनका intention ये है, इनका नियत ये है, या वो अनजान के रूप से ये कर रहा है। तो अनजान के रूप से तो बहुत इजीली आर्टिकुलेट हो ही सकता है, और अगर उनका इंटेंशन है देन अ लिटिल मोर स्ट्रिंजेंट एक्शन और काउंसलिंग इज नीडेड।
हमारे बीच में एक बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे बीच बहुत पधार चुके हैं। मैं चेयरमैन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन श्री श्रीकांत माधव वैद्य जी को स्टेज पर सादर आमंत्रित। हाँ जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सर प्लीज आए और अपना स्थान ग्रहण करें। बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि बैज और गुलदस्ते से भूषण भाई आपसे भी निवेदन है कि आप भी स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। जी। मैं डॉक्टर प्रताप मीणा भाई से भी रिक्वेस्ट करता हूं अगर वो हमारे बीच मौजूद हैं तो प्लीज स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर पांडा सर, उनसे भी अनुरोध है कि प्लीज एक और कुछ। प्रताप भाई का भी स्वागत बहने कर रही हैं। भरत भाई आप कुछ कहना चाहते हैं?
ओम शांति। ये खुशी की बात है, कुछ ऐसा प्लान नहीं किया था। ट्रांसपोर्ट विंग में हमारे चेयरमैन इंडियन ऑयल पधारेंगे, आप तो आए हैं नीचे MRI मशीन का उद्घाटन करने अपने संस्था में और सिरोही में, जो कि बहुत पिछड़ा हुआ जिला है, गरीबों को आदिवासियों को बहुत जरूरत थी, तो आपके स्पॉट से MRI मशीन नीचे आई है, उसका आप उद्घाटन करने के लिए आए हैं। उद्घाटन समारोह कल है कॉन्फ्रेंस हॉल में 10 बजे, लेकिन आपको एक दिन पहले, ताकि माउंट आबू आप देखें, और ये हमें भी नहीं पता था, उस वक्त ट्रांसपोर्ट विंग का प्रोग्राम, तो पता लगा, दिव्या बहन ने भी बात किया, हमने भी, बिजी तो बहुत थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, 10 मिनट हम जरूर आपसे चाहेंगे, और आपने स्वीकार किया, और मुझे रास्ते में बता रहे थे, हम भी ट्रांसपोर्ट ये बहुत काम करते हैं सेफ्टी वाला, रोड सेफ्टी का, और ये तो अच्छा हुआ। इसमें तो सर ये सब 500 के लगभग सारे इंडिया से इस विंग से जुड़े हुए आए हैं, साथ में उनका तो खूब जोरदार अभिनंदन करते हैं भ्राता, और साथ साथ मैडम सुरेखा जी भी आई हैं, वो आप भी बैठे हैं, आप श्रीकांत माधव जी वैद्या जी, आप मैडम सुरेखा वैद्या जी, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं, और इंडियन ऑयल के पूरे राजस्थान के जयपुर हेडक्वार्टर है पांडा साहब आलोक पांडा जी भी हम सबके बीच में पधारे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनका भी अभिनंदन, कुछ अधिकारी और भी साथ में आए हैं, उन सब का अभिनंदन करते, थैंक यू। डॉक्टर प्रताप जो मुख्य निमित्त हॉस्पिटल नीचे ऊपर सब कार्य संभाल रहे हैं, डायरेक्टर हैं हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल के, बाल ब्रह्मचारी हैं, 73 की एज हो गई है, लेकिन इतने एनर्जेटिक हैं, दिन रात सेवा कर रहे हैं, उनके लिए भी खूब अभिनंदन के लिए तालियां। मैसल भारत भूषण, मैं पानीपत से आया हूं, साइंटिस्ट इंजीनियर विंग में नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं, आपका सेवक हूं, थैंक यू।
थैंक यू भारत भूषण भाई। क्वेश्चन आंसर के सेशन में एक अंतिम प्रश्न में, क्योंकि डॉक्टर प्रताप मेडा भाई जो हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं, उनसे मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन का हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उससे क्या बेनिफिट होता है हेल्थ पर, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हमें ब्रीफ में बताएं, और यहाँ क्या क्या हॉस्पिटल सेवाएं करते हैं, आजू बाजू के गाँव के लिए, मेडिकल केयर के लिए कितने फ्री सर्विसेस करते हैं, उसका भी थोड़ा सा आप हमें बताएं।
शुक्रिया गिरीश भाई। एक अगर एक लाइन में उत्तर दिया जाए, हम सब ये तो समझते हैं कि शरीर मन बुद्धि और ये जो पांच तत्वों का पुतला उससे बना हुआ है, शरीर की तो हम बहुत संभाल करते हैं लेकिन मन की संभाल नहीं करते। तो मन जो मेडिटेशन है, जो हम यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सीखते हैं, उसकी फाउंडेशन है पॉजिटिव थिंकिंग, कि आपके विचार शुद्ध हों, शक्तिशाली हों, दिव्य गुणों पर आधारित हों, सेवा के लिए हों, तो फिर आपका तन भी सुंदर हो जाता है। हम लोग यहाँ हर वर्ष माइंड बॉडी मेडिसिन की कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस साल भी अभी 8 से 11 सितंबर को है, उसमें डॉक्टर्स लगभग 800 डॉक्टर्स आ रहे हैं, तो उसका एम्फेसिस यही होता है कि मन को शुद्ध रखने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, जीवन में कुछ डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये जरूरी है कि हम मन को अगर शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को ये हमेशा इश्यू रहता है कि आप पेशेंट को 10 चीजें बताएंगे, वो कंप्लायंस सिर्फ 3 की ही करेगा, तो कंप्लायंस कैसे, वो हमारे लिए भी एप्लीकेबल है सबके लिए, कि जो चीज हम सोचते हैं कि हम अपने मन को शांत रखें, मन को बैलेंस्ड रखें, मन में कोई भी इरिटेशन ना हो, वो कैसे संभव होगा, उसके लिए कुछ ना कुछ साधना की जरूरत है, और उसको हम मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन को अगर आप उसका अर्थ, जो उसकी रूट्स में जाएंगे, उसका अर्थ ये है कि लुक आफ्टर करें अपने आप को, तो दिस इज लाइक सेल्फ केयर, जो हम रोज मेडिटेट करते हैं सुबह अमृत वेला, ये अपने आप की संभाल करते हैं हम, तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि नेगेटिविटी चारों ओर हमारे पास है, तो इससे नेगेटिविटी से जो स्ट्रेस होता है, नेगेटिविटी से जो टेंशन होती है, उससे हेल्थ को इफेक्ट होता है, ये तो आप पूरी दुनिया मान रही है, लेकिन अभी पॉजिटिव साइकोलॉजी में ये मानते हैं कि अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप कंपैशनेट हैं, अगर आप केयरिंग हैं, तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्ट्रांग होता है, यानी आपका जो बीमारी लड़ने से ताकत है वो बढ़ती है। तो हमने यहाँ रिसर्च भी की है हार्ट डिजीज पे, खासतौर पे डायबिटीज पे। उसमें ये पाया है कि अगर आप मेडिटेशन को मेडिसिन के साथ कंबाइन करते हैं तो सिनर्जिस्टिक है, जो इफेक्ट होता है वो ट्रिपल हो जाता है। तो इससे मेडिटेशन और मेडिसिन को कंबाइन करने की जरूरत है। ये नहीं कि मेडिसिन को हम दरकिनार कर सकते हैं, लेकिन अगर मेडिटेशन और मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होगा तो हम ना केवल फिजिकली हेल्दी होंगे लेकिन मेंटली भी स्ट्रांग होंगे। तो मैं समझता हूँ दिस इज व्हाट आवर लाइफ में यही गोल है कि हम जितने भी हैसल्स हैं, जितने भी इवेंट्स आते हैं, उनको इफेक्टिवली मैनेज रहें और सेंस ऑफ कंट्रोल लाइफ में रहे।
ग्लोबल हॉस्पिटल क्या सेवाएं करते हैं भाई?
वेल, हॉस्पिटल दिस इज अ डिफरेंट हॉस्पिटल, मैं ये कहूंगा इसको हम होलिस्टिक हॉस्पिटल कहते हैं। इट इज बियॉन्ड द वॉल्स ऑफ द हॉस्पिटल। वी हैव डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, देन वी हैव आयुर्वेदा, वी हैव होम्योपैथी, वी ट्रीट पेशेंट्स विद मैग्नेट्स ऑल्सो, एंड मोस्ट इफेक्टिव इज मेडिटेशन। हमारे यहाँ एक अलग से डिपार्टमेंट है, उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड वेलबींग। बाकी टेक्नोलॉजी तो चाहिए, जैसे MRI टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ ह्यूमन टच भी चाहिए। तो हमारी जो नर्सेज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो रेगुलरली मेडिटेट करते हैं, तो पेशेंट्स भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये डॉक्टर मेडिटेट करते हैं, ये नर्स मेडिटेट करता है, क्योंकि वाइब्रेशंस जो है ना वो बहुत पॉजिटिव चाहिए। हीलिंग में भी पावरफुल वाइब्रेशंस चाहिए। एक बार पेशेंट को नेगेटिव मैसेज चला गया तो पेशेंट होप ही लूज कर देता। तो इसलिए डॉक्टर और एनवायरमेंट भी ऐसा है, हम लोग वहां पे म्यूजिक प्ले करते हैं जिसको हम ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं, एवरी आवरली। तो यू जस्ट हैव टू गिव ए ब्रेक टू योर थॉट्स, गो विद इन एंड चार्ज योर सेल्फ। और उसके अलावा जो यहाँ की कम्युनिटी की नीड है, वेदर इट इज आई केयर और जनरल सर्जरी है, मेडिसिन है, टेक्नोलॉजी सब है। यहाँ माउंट आबू में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, देन फुट हिल्स पे आबू रोड में ट्रॉमा सेंटर है जहाँ ये MRI लगाने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ आई हॉस्पिटल है। आई हॉस्पिटल सारे 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। वी डू कम्युनिटी ऑप्थल्मोलॉजी, मोस्ट ऑफ आवर वर्क इन्वॉल्व विद पुअर पीपल, वेदर इट इज पीडियाटिक ऑप्थल्मोलॉजी और वेदर इट इज पीडियाटिक आर्थोपेडिक्स। वी डू हेल्प चिल्ड्रन द मोस्ट, स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स है। तो ऐसे इट इज ए कम्युनिटी ओरिएंटेड हॉस्पिटल। इट इज वी ट्राई टू गिव द स्टैंडर्ड्स। वी आर ए एक्रेडिटेड हॉस्पिटल बाय NABH, पर जो पुअर पेशेंट्स हैं, वी डोंट टर्न डाउन एनी पेशेंट हु कैन नॉट अफोर्ड। उस जो नहीं अफोर्ड कर सकता उसको भी वही लेवल ऑफ केयर मिलता है जो पे करते हैं। तो ये प्रिंसिपल शुरू से रहा है, और प्लस जिन्होंने भी अपनी लाइफ डेडिकेट की हुई है परमात्मा को, जैसे चाहे वो जैन मुनि है या क्रिश्चियन नंस है या ब्रह्मा कुमारी सिस्टर्स है, उनको टोटल केयर मिलती है। टोटल केयर भी प्रोवाइड वट एवर पॉसिबल विद इन आवर रिसोर्सेज। तो इसलिए इसका नाम ही ग्लोबल है, और ये हॉस्पिटल शुरू हुआ था ब्रह्मा कुमारी का एक प्रोजेक्ट था, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। तो इसमें पूरी दुनिया से लोग इसमें सहयोगी हैं, भारत से भी और दुनिया से भी। थैंक यू
सो मच भाई साहब। सो मेडिसिन, मेडिटेशन एज मेडिसिन भी आज हमको ये एक नई बात पता चला। और आप जिस दिन माउंट आबू का विजिट करेंगे, तो अगर आप चाहें तो आप हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का भी भ्रमण कर सकते हैं। यू विल फाइंड इट सो ब्यूटिफुल, सो डिफरेंट, सो यूनिक। सो प्लीज मेक इट अ पॉइंट दैट इन योर लिस्ट ऑफ साइट विजिट्स आप ग्लोबल हॉस्पिटल भी जाएं। मैं आदरणीय श्रीकांत माधव वैद्य जी से रिक्वेस्ट करता हूं, सर आप हम सब जो यहां पे स्पीड, सेफ्टी एंड स्पिरिचुअलिटी, स्थूल यात्रा और जीवन यात्रा, इसके प्रति अपने विचार व्यक्त करें, हमें ब्लेसिंग्स दें, हमें मोटिवेट करें और अपने विचार हमारे साथ रखें। आदरणीय श्रीकांत जी.
सबसे पहले थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर. स्पीड, सेफ्टी, स्पिरिचुअलिटी, तो इंडियन ऑयल चेयरमैन होने के कारण आई कैन ओनली टॉक ऑफ स्पीड और सेफ्टी. स्पिरिचुअलिटी मैं थोड़ा दूर हूं उससे. बेसिकली क्या है, इंडियन ऑयल, मैं जैसे बता रहा था मिस्टर भारत भूषण जी को, वी आर हैविंग 50,000 ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स, नॉट डायरेक्टली, थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर. और हम जितना प्रोडक्ट बनाते हैं लगभग 1/3, 1/3 रोड ट्रांसपोर्टेशन से ट्रांसपोर्ट होता है. एंड वी आर ट्रैवलिंग एवरी डे 3 लाख किलोमीटर्स पर डे बिकॉज आवर स्प्रेड पूरे देश में है. तो ट्रांसपोर्टेशन इज अ वेरी डियर सब्जेक्ट टू अस, क्योंकि हम लोग जो पदार्थ ट्रैवल ट्रांसपोर्ट करते हैं वो ज्वलनशील है, हाईली इन्फ्लेमेबल है, पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल, गैस, एलपीजी गैस. तो सेफ्टी इन ट्रांसपोर्टेशन इज ऑफ वेरी वेरी पैरामाउंट इंपॉर्टेंस टू अस. कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट होता है पेट्रोल का, टैंकर का पेट्रोल लीक होने लगती है, आजू बाजू के लोग आके दे स्टार्ट कलेक्टिंग द पेट्रोल एंड देन सम एक्सीडेंट हैपन्स, तो उसमें कई लोग की जान चली जाती है बिकॉज द प्रोडक्ट दे डोंट रियलाइज कि वॉट इज द हैजर्ड्स ऑफ कलेक्टिंग पेट्रोल इन द ओपन. तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इस ट्रांसपोर्टेशन विंग का, बिकॉज सेफ्टी इज द नीड ऑफ द आवर. बिकॉज इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इन टर्म्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी इज एक्सट्रीमली बैड. पर 1,000 व्हीकल्स अगर एक्सीडेंट देखा जाए तो इंडिया का नंबर बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द नंबर ऑफ व्हीकल्स जितने हमारी पास है, उससे ज्यादा हमारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं रोड ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो ये जो कार्यक्रम है, हम लोग भी कई रोल्स करते हैं बट ऑफकोर्स हम लोग स्पिरिचुअलिटी को टच नहीं करते हैं. बट जो ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स हैं उनके लिए हम लोग कई स्कीम्स करते हैं ताकि दे रियलाइज उनके एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग, आई मीन फाइनली रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग की तरफ हम उनको ले जाते हैं. बीच में हमारे UPSO 2 ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था. उन्होंने क्या किया, उस ड्राइवर के परिवार का चित्र, हस्बैंड वाइफ एंड, वो उनके ट्रक में हमने लगा दिया है कि भाई आप जब भी चलाओ तो यू प्लीज रिमेम्बर दैट यू हैव गॉट अ फैमिली टू सपोर्ट एंड डोंट बी रैश इन योर ड्राइविंग. इट इज अ वेरी स्मॉल मूव बट आई लेट मी टेल यू, लेट मी कि द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स केम डाउन ड्रास्टिकली बाय दैट वन सिंपल स्टेप. सो वी गॉट एनकरेज, अभी हमने पैन इंडिया इसको इम्प्लीमेंट किया है. सेकेंडली वी ऑल्सो काउंसिल देम ऑन एल्कोहलिज्म कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव बिकॉज फाइनली इट इज दे हु इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कैजुअलिटी. और हमारे पास ऑटोमेशन में भी है, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम्स हमने लगाई हैं बिकॉज कई बार हम देखते हैं अगर वो ओवर स्पीडिंग कर रहा है तो वी आर एबल टू गेट द इन्फॉर्मेशन इन आवर कंट्रोल रूम्स एंड वी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट देम इमीजिएटली कि भाई एक तो रात में ड्राइविंग हम जितना हो सके कम कराते हैं, आफ्टर 10 PM से मॉर्निंग 6 AM तक वी हैव व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम ताकि दे डोंट ओवर स्पीड. So we have taken many measures by which the driver is able to act responsibly because finally we want him to be safe and we want the product to be safe and the surrounding areas to be safe. Aur main abhi just Panda ji ko bol raha tha, ye jo spirituality factor hai, I think we'll take the help of Brahma Kumaris so that this part also can be covered in the whole thing. Taki jaise doctor sahab ne bataya abhi ki medicines and meditation, so I think that cycle will be complete if we attack all the three areas. And I'm very happy to be a part of this. वैसे मेरा plan नहीं था ऐसे, but being an oil man, transportation की तरफ तो मुझे आना ही था. तो I'm very happy I've come here, and I wish this program all the best in the days and years to come. Thank you very much.
We also wish you complete health, wealth, and prosperity, not only to you, to your family, as well as to the IOCL family. And आपको बताते हुए मैं बहुत खुशी होती है कि दिव्या दीदी के लीडरशिप में IOCL, BPCL, HPCL के डिपोज में जाकर के हमारी बहनें अक्रॉस द होल ऑफ द कंट्री वी डू प्रोग्राम्स फॉर द ड्राइवर्स, आधा दिन का, दो घंटे का, एक दिन का, हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं. सो आपकी तरफ से भी ऐसा कुछ इनिशिएटिव होगा तो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द बेस्ट पॉसिबल वे. दोस्तों आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है हमारे पैनल के लिए? या ब्रदर जी.
देखिए ऐसा है, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ आवर बॉडी, वन वी कॉल साइकी, द अदर इज सोमा विच वी हैव बीन टॉट. साइकी इज कॉन्शियसनेस, इट इज एब्स्ट्रैक्ट, इट इज नॉट फिजिकल, इट इज मेटाफिजिकल. और उसके कंपोनेंट्स है जिसको हम एनाटॉमी ऑफ सोल में पढ़ते हैं। यहाँ मन, मन जो है वो थिंकिंग फैकल्टी है, उसके बाद इंटेलेक्ट है जो डिसीजन मेकिंग फैकल्टी है, और जो हम कर्म बार बार करते हैं जिसको हम हैबिट कहते हैं, हम आध्यात्मिक भाषा में उसको संस्कार कहते हैं। तो मन, बुद्धि और संस्कार ये साइकी की फैकल्टीज हैं। तो अभी ये देखा गया है कि अगर मन हमारा शक्तिशाली होगा, और उसमें भी खास बात ये है कि मन शुड, देयर शुड बी सम सेंस ऑफ कंट्रोल इन लाइफ। हम देखते हैं आज जो लाइफ, हम लाइफ स्टाइल हमारा बन गया है, विच इज अ मेजर कॉज ऑफ इलनेस इज टूडे द वे वी लिव अवर लाइफ। जिस तरह के जीवन हम जी रहे हैं वही रोगों का मेन कारण है। तो अगर मन को हम स्ट्रांग बनाएंगे, और मन को स्ट्रांग बनाने का तरीका ये एक ही है कि मन को हमें पॉजिटिव थिंकिंग की आदत डालनी है, और वो मेडिटेशन से, साधना से। आप कुछ अच्छा पढ़ते हैं, अब आप देखिए जो हमारी जितनी भी होली बुक्स है, वेदर यू टेक अप गीता, उसमें मन को ही साधने की बात है। पर हम मन को मार नहीं सकते, लेकिन मन को ट्रेन कर सकते हैं। मन को एक फैकल्टी, एक सोर्स की तरह ले, तो वो हमारे लिए जैसे यूजफुल हो जाएगा। बच्चे की तरह है, बच्चे को कोई भी चीज, मान लीजिए उसके पास नाइफ है, अगर आप उससे नाइफ छुड़वाना चाहते हैं तो उसको कोई अट्रैक्टिव चीज देनी पड़ेगी, वो नाइफ को भूल जाएगा। ऐसे मन को भी अच्छी चीजें सिखाने, अच्छे विचार देने, तो वो नेगेटिविटी अपने आप पीछे छूट जाएगी। उसके लिए मेहनत नहीं करनी, लेकिन कल्टीवेट क्या करना है, पॉजिटिव थिंकिंग, गुड थिंकिंग, पावरफुल थिंकिंग, वो करेंगे तो मन हमारा हो जाएगा, इट विल बिकम आवर फ्रेंड।
थैंक यू डॉक्टर साहब। दोस्तों, हम प्रोग्राम के अंतिम चरण में हैं। मैं आदरणीय अशोक भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, जो चेयरमैन है एकता वर्ल्ड मुंबई से, वो अपना अनुभव भी शेयर करेंगे कि किस प्रकार मेडिटेशन ने उनको हर प्रकार से, यू नो, 360 डिग्री कंप्लीटली, उससे उनको क्या क्या फायदा हुआ। मैं अशोक भाई से रिक्वेस्ट करता हूं अपना अनुभव शेयर करें।
थैंक यू गिरीश भाई, ओम शांति। मैं ये आंसर थोड़ा डिफरेंटली करूंगा, क्योंकि सब व्यक्ताओं ने लास्ट कल से गति, सुरक्षा और आध्यात्मिक के बारे में बहुत कुछ बताया है। अभी भी श्रीकांत जी ने हमें बताया है कि व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज आल्सो सेफ्टी। मेरी जिंदगी में गति वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ज्ञान से पहले जब मैं आया तो आई वॉज रनिंग अ रैट रेस, लाइफ वॉज वेरी कंपेटिटिव, और दूसरों के रास्तों में मैं, मतलब चल रहा था, बताए हुए रास्तों में मैं चल रहा था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू समहाउ बीट दैट पर्सन इन द रेस। उसने बनाया रास्ता एंड आई वॉन्ट टू फॉलो दैट रास्ता एंड ट्राई एंड ओवरटेक हिम। तो ये थी मेरी गति। अभी क्या चेंज आया आफ्टर ज्ञान, आई एम ग्रेटफुल टू दिव्या बहन जिन्होंने मुझे पालना दिया। तो आई रियलाइज दैट इंस्टेड ऑफ रनिंग, व्हाई डोंट आई क्रिएट माय ओन पाथ, क्यों ना मैं अपना एक दिशा बनाऊं और उस पर चलूं, और मेरे चले हुए रास्ते पे और भी चले। तो बाबा ने बताया कि यू आर अ हीरो पाटदारी, आपको देख करके दूसरे भी वही फॉलो करेंगे, एवरीबडी इज वॉचिंग यू, सो वाई डोंट आई फॉलो दैट पाथ। इससे क्या हुआ ना गिरीश भाई, कि बिकॉज ऑफ दिस पैराडाइम शिफ्ट इन माई लाइफ, ओनरशिप से लेके ट्रस्टीशिप तक, सो आई वॉज ओनिंग एवरीथिंग। ये मेरा है, ये मेरा बंगला है, ये मेरा गाड़ी, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरे एम्प्लॉयज है, और उसमें एंड देन ज्ञान आने के बाद में मुझे ये महसूस हुआ कि अपने आप को हल्का कैसे रख सकते हैं। सो आई स्टार्टेड थिंकिंग माई सेल्फ एज ए ट्रस्टी फॉर बाबा, फॉर ऑलमाइटी परमात्मा। उससे क्या हुआ कि जो फिक्र थी, जैसे बाबा बताते हमारा सम्मान है, बेफिक्र बादशाह, तो दैट इज व्हाट आई अडॉप्टेड। और उसे तो पूरा एक जो सुरक्षा है, एक कवच मेरे ऊपर बन गया एंड आई वॉज फीलिंग प्रोटेक्टेड। मैंने बाबा को अपना दोस्त बनाया, अपना साथी बनाया एंड उनके डायरेक्शंस के हिसाब से मैं चलने लगा। जो हम सब अमृत वेला करते हैं, दैट इज अ टाइम व्हेन यू गेट ऑल द शक्ति, जब पूरी एनर्जी मिलती है ना हमें, वो उस टाइम पे मिलती है। आपने एक प्रश्न पूछा कि भाई मुकुल भाई से, दैनी दिव्य बहन ने उसे आंसर किया कि भाई इतना मशरूफ होते हुए भी आप कैसे मेडिटेशन करते हो, तो मैं अपना तरीका बताऊंगा जो मैं करता हूं। तो जितने भी बाबा की महिमा है, दैट ही इज द क्रिएटर डायरेक्टर, ही इज टावर ऑफ पीस, ओके, ही इज आवर फादर, गॉड फादर, ऑलमाइटी फादर, वो सब मैं याद करता हूं। एवरी वन आवर देर इज एन अलार्म, सबके मोबाइल में अलार्म है, एवरीबडी इज सो टेक सेवी, तो वो आप अलार्म लगाइए। और उस टाइम पे जैसे इन्होंने बताया कि पानी पीते वक्त भी जितना 30-40 सेकंड लगता है, आप परमात्मा को याद करें। तो याद कैसे करने का, जस्ट गो ऑन सिंगिंग हिज ग्लोरीज, उनकी महिमा गाओ। आई एम टेलिंग यू, यू विल स्टार्ट रिलेटिंग टू हिम सो कंफर्टेबली दैट यू विल अभी आप क्या हो, क्या बन जाओगे ना, वो आपको तभी महसूस होगा व्हेन यू स्टार्ट रिलेटिंग टू योर फादर। मैंने इतनी मुश्किलें देखी है, आई टेल यू फॉर 10 years, 10 साल तक एक अंडरवर्ल्ड डॉन है, शायद आप सब उसका नाम सुना होगा, रवि पुजारी। उसने मुझे छोड़ा नहीं, ना मेरी फैमिली को छोड़ा, मेरी पत्नी इधर है, मेरी बेटी इधर है। ही अटैक्ड एवरी प्लेस इन माई प्रोजेक्ट्स, ओके, देर वॉज ब्लड शेड, देर वॉज गन फायर, बट दिस हैपेंड इन 2006 टू 2016, 10 years। और वो मेरा पीक था ज्ञान में, दैट वॉज माई पीक। आई केम इन ज्ञान हियर इन माउंट आबू इन 1998, तो 2006 से 2016 तक विच में आई वॉज कंप्लीटली विद बाबा। वो जो विश्वास था, दैट मेड मी स्ट्राइड थ्रू दिस टाइम्स ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो। सो दिस इज वॉट सुरक्षा इज, एंड जैसा स्पिरिचुअलिटी कैसे हम लोग मिस कर सकते हैं विथ गति, दिस इज व्हाट आई लर्नड ऑल दीज लास्ट 25 years। सबसे विनती करूंगा कि आप लोग भी जिन्होंने नहीं किया है कोर्स, जरूर करिए कोर्स एंड हैव दैट कंप्लीट ट्रस्ट इन परमात्मा एंड यू सी हाउ योर लाइफ चेंजेस। थैंक यू,
थैंक यू सो मच, इट वॉज वेरी टचिंग एंड इंस्पायरिंग कि आपने इतने सब कष्ट, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस को हैंडल करते हुए, आपके चेहरे को देख के लगता नहीं है कि आपने ऐसा कुछ फेस किया होगा, यू आर एवर स्माइलिंग। आदरणीय श्रीकांत जी, दिव्या दीदी, मंच पर हमारे बीच बैठे हुए सभी आदरणीय मेहमान, सभा में आप सभी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। हम 2 मिनट परमात्मा की याद में रहकर इस प्रश्नोत्तरी के सत्र को समाप्त करेंगे। या
पांडा साहब
जी,
आप सबका ट्रांसपोर्ट विंग का प्रोग्राम देखकर उन्होंने मुझे कहा है कि जयपुर में मैं आमंत्रित करता हूं कि आप कोऑर्डिनेट करना, हम ट्रांसपोर्ट वालों का वो प्रोग्राम रखेंगे। और चेयरमैन साहब से मिलकर भी हम ये कनेक्शन जुड़ा है, तो हम ड्राइवर्स के लिए सेफ्टी का वो सारा ट्रांसपोर्ट विंग के साथ करके कनेक्शन, ये एक सेवा का कार्य, उन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुए, तो मैंने उनकी ओर से अनाउंसमेंट की
जी।
थैंक यू,
विशेष IOCL का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हर प्रकार से वो हमें सहयोग देते हैं। ट्रक ड्राइवर्स के लिए भी हम जरूर ये कार्यक्रम करेंगे। 2 मिनट हम परमात्मा की याद में, ईश्वर की याद में बैठेंगे, अपने मन को ईश्वर की ओर लेकर जाएंगे, हर बातों से डिटैच कर लें अपने आप को फॉर द नेक्स्ट 3 मिनट्स, पूरी एकाग्रता से वो जो पॉइंट ऑफ लाइट है, जिसको हम बहुत प्यार से शिव बाबा कहते हैं, उसके तरफ हम देखेंगे, उसको विजुअलाइज करेंगे और शांति को महसूस करेंगे। अगर इस दौरान मन कहीं जाता है तो उसको बहुत प्यार से फोकस करने का प्रयास करें, और यही प्रैक्टिस है। और धीरे धीरे हमको वो अनुभूति होना शुरू हो जाएगा। ओम शांति।